server555.com audio production. Sir Arthur Conan Doyle's Speckled Band. Part 1. मैंने गुज़िश्ता 8 सालों के 70 के करीब केसों पर नजर डाली जो कि मेरे दोस्त शर्लक होम्स ने अपनी जहानत से हल किए, जिनमें ट्रेजिक, कॉमिक और बहुत बड़ी तादाद में हैरान कर देने वाले केस शामिल थे। ये केस शर्लक होम्स ने दौलत के हसूल से ज्यादा अपने शौक की तस्कीन के लिए हल किए। हर वो केस जिसमें गैर मामूली वाका ना होता, शर्लक होम्स उसे लेने से ही इनकार कर देता। इन केसेस में सबसे अजीब केस सरे खानदान से ताल्लुक रखता था। ये थे रॉयलट ऑफ स्टॉक मोरेन। ये उन दिनों की बात है जब मेरी नई शर्लक होम्स से जान पहचान हुई थी। मैं गैर शादीशुदा था और बेकर स्ट्रीट में होम्स के साथ उसके घर में रहता था। मैं इस केस को पहले इसलिए मंजरे आम पर नहीं ला सका क्योंकि इसे पोशीदा रखने का वादा किया था। जिससे वादा किया वो औरत पिछले महीने वफात पा गई और वादा यही था कि उसकी जिंदगी में ये किसी को नहीं बताया जाएगा। हाँ, इसकी एक और वजह यह भी है कि उन हकायक से पर्दा उठाया जाए जो कि डॉक्टर ग्राइम्स बी रॉयलट की मौत की वजह थे। अप्रैल का महीना था जब एक सुबह शर्लक होम्स ने मुझे जगाया। वो सुबह देर से उठने का आदी था मगर इस वक्त सिर्फ 7:15 थे। नींद पूरी नहीं हुई थी, चुनाचे मैंने उठने से हिचकिचाहट का इजहार किया। तुम्हें जगाने पर मुझे अफसोस है मगर मिसेज हडसन ने मुझे जगाया और मैंने तुम्हें। क्यों, क्या हुआ, क्या आग लग गई है? नहीं, एक कम उम्र खातून परेशानी की हालत में मिलने आई हैं। वो हमारा इंतजार कर रही हैं। जब कोई खातून इतनी सुबह मिलने आए और मुलाकात पर इसरार करे तो मामला जरूर संजीदा होता है और मुझे यकीन है कि तुम भी इस खातून से मिलना पसंद करोगे। हाँ हाँ जरूर, मैं तो खुद इन मामलात में आखिरी हद तक दिलचस्पी लेता था। हम दोनों औरत के पास मौजूद थे। होम्स बोला, गुड मॉर्निंग, वाह शानदार आग जल रही है और आपको जल्द ही गरम गरम कॉफी मिलेगी। मैं देख रहा हूँ कि आप सर्दी से कांप रही हैं। मेरी कपकपी की वजह सर्दी नहीं है, फिर खौफ दहशत इस कपकपी की वजह है। औरत के चेहरे से भी उसके खौफ का इजहार हो रहा था। वो 30 साल की होगी मगर बाल उम्र से पहले ही सफेद होने वाले थे। आप खौफजदा ना हो, जल्द ही आपका मसला हल हो जाएगा। आप सुबह जल्दी उठी, डॉग कार्ट पर स्टेशन पहुंची और फिर रेल के जरिए यहाँ आई। आपको कैसे मालूम हुआ? आपके लिबास में लगी मिट्टी और हाथ में पकड़े टिकट से। सर, हालात ऐसे ही रहे तो मैं पागल हो जाऊंगी। दुनिया में मेरी मदद करने वाला एक मोहब्बत करने वाले इंसान के अलावा और कोई नहीं। मैंने आपके मुतालिक मिसेस फेरेंटोश से सुना, उन्होंने ही मुझे आपका एड्रेस दिया। मुझे यकीन है कि मेरे पुरिसरार और अजीबोगरीब हालात में आप मेरी मदद करेंगे। महीने तक मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरे पास काफी रकम होगी जो मैं आपके मुआवजे के तौर पर आपको दे सकूंगी। मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। सुराग रसानी मेरा शौक है और यही मेरा मुआवजा। आप चाहें तो जब भी मुनासिब ख्याल करें सिर्फ इखराजात दे सकती हैं। मिस्टर होम्स, मैंने सुना है कि आप इंसान के अंदर छुपे हुए शैतान को देख सकते हैं। खतरा है मगर कहाँ, ये मालूम नहीं। मुझे जो खौफ है उस शक की बुनियाद बहुत मामूली चीजों पर है। मैंने जब अपने बहुत चाहने वाले को इस बारे में बताया तो उसने मुझे कहा कि ये सिर्फ मेरा शक है और कुछ नहीं। जुबान से तो उसने ये बात नहीं कही मगर उसकी तसल्लियों ने बताया कि उसकी ये सोच है। तो मैंने सोचा कि आपसे मिलूं कि आप कोई मुफीद मशवरा दें। मेरा नाम हेलन स्टोनर है। मैं अपने सोतेले बाप के साथ रहती हूं जो कि इंग्लैंड के बहुत कदीम खानदान के आखिरी फर्द हैं। ये खानदान कभी इंग्लैंड के अमीर तरीन खानदानों में से था मगर फजूल खर्चियों और जुए वगैरह ने तमाम जायदाद खत्म की और अब सिर्फ चंद एकड़ जमीनें ही बची हैं और 200 साल कदीम घर जिस पर भी कर्जा चढ़ा हुआ है। मेरे सुतेले बाप ने खराब हालात को देखते हुए डॉक्टर बनने का फैसला किया और प्रैक्टिस के लिए कलकत्ता चले गए। वहाँ वो कामयाब डॉक्टर साबित हुए मगर वहाँ चोरी के शुबे में उन्होंने गुस्से की हालत में अपने बावर्ची को मारा और इतना मारा कि वो मर गया। सजाए मौत से तो वो बच गए मगर तवील कैद की सजा हुई। रहा होने पर वो इंग्लैंड वापस आ गए नाकाम और मायूस इंसान के तौर पर। डॉक्टर रॉयलट ने इंडिया में ही मेरी वालदा से शादी की, यानी मेजर जनरल स्टोनर की कम उम्र बेवा से, जो बंगाल आर्टिलरी से ताल्लुक रखते थे। मैं और मेरी अकलौती बहन जूलिया में बहुत मोहब्बत थी। माँ की दूसरी शादी के वक्त हम जुड़वा बहनों की उम्र सिर्फ 2 साल थी। मेरी वालदा की जायदाद बहुत ज्यादा थी, कम अज कम $1,000 सालाना, मगर ये सब कुछ सौतेले वालिद के सपोर्ट कर दिया गया। हम बहनों को हमारे हिस्से की रकम शादी के बाद मिलना थी। इंग्लैंड वापसी के कुछ अरसे बाद मेरी वालदा दुनिया से चली गई। ये 8 साल पहले की बात है। रेलवे एक्सीडेंट ने उनकी जान ली। उसके बाद सौतेले बाप ने अपने कदीम घर में रहने का फैसला किया। माँ की तरफ से काफी रकम मिली थी जिसे अच्छा गुजारा हो सकता था, मगर वालिद के मिजाज में खतरनाक तब्दीली रूनमा हुई। इलाके के लोग खुश थे कि कदीम खानदान के फर्द उस इलाके में रहने आए हैं, मगर मेरे सौतेले बाप ने किसी से भी मिलना जुलना पसंद ना किया, बल्कि अपने घर में ना किसी को आने की इजाजत दी ना किसी से मिलने गए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो उनकी जमीनों में से गुजरता उससे शदीद लड़ाई हो जाती। उनके खानदान में तशद्दुद की बीमारी की अलामात पहले से मौजूद हैं, मगर इंडिया के मौसम की वजह से उनमें ये बीमारी बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इलाके में वालिद साहब ने लड़ाइयां की, पुलिस तक बात जा पहुंची। अब तमाम इलाका उनसे खौफजदा है। वो जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर हैं, गुस्से पर काबू पाना उनके लिए नामुमकिन है। पिछले हफ्ते उन्होंने एक आदमी को मारा और नदी में फेंक दिया, जिसे मैंने अपनी तरफ से रकम दी और मामला खत्म करवाया। आवारा जिप्सियों के अलावा उनका अब कोई भी दोस्त नहीं है। इन जिप्सियों को उन्होंने अपनी जमीन पर कैंप लगाने की इजाजत दे रखी है और उनके साथ हफ्तों महीनों तक वो आवारा गर्दी करने भी जाते हैं। इंडिया के जानवरों का भी उन्हें शौक है। इस वक्त भी घर में एक चीता और बनमास मौजूद है। वो आजादी से घूमते फिरते हैं और अपने मालिक की तरह इलाके के लोगों को खौफजदा रखते हैं। इन हालात की वजह से मैं और मेरी बहनें जूलिया मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे। मुलाजिम हमारे पास ठहरता नहीं था। मेरी बहन अपनी मौत के वक्त 30 साल की थी, मगर मेरी तरह उसके बाल भी सफेद होने लगे थे। ओह, तो आपकी बहन मर चुकी है? हाँ, 2 साल पहले। उसकी मौत के बारे में ही मैं आपसे बात करने आई हूँ। आपको मैंने जो हालात बताए उनकी वजह से हम अपनी उम्र के लोगों से कहाँ मिल सकते थे। हाँ, हमारी एक आंटी है, मेरी अम्मी की बहन, और हमें इजाजत थी कि वहाँ जा सकें। मेरी बहन वहाँ एक मेजर से मिली और उन दोनों की शादी तय हो गई। बाप को ये बात मालूम हुई, मगर उसने कोई एतराज ना किया। मगर शादी से 2 हफ्ते पहले ये अफसोसनाक हादसा हुआ और मेरी बहन दुनिया से रुखसत हुई। शर्लक होम्स आंखें बंद किए कुर्सी पर बैठा था। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर लड़की को देखा और कहा, जरा तफसील से बताएं क्या हुआ था। हाँ, हर चीज मेरे जहन में बिल्कुल ताजा है। हमारे मकान की निचली मंजिल पर पहला कमरा डॉक्टर रॉयलट का है, दूसरे में मेरी बहन और तीसरे में मैं रहती हूँ। इन तीनों के दरमियान कोई रास्ता नहीं, मगर दरवाजे सबके ही एक बरामदे में खुलते हैं। तीनों की खिड़कियां पिछली जानिब के लॉन बाग में खुलती हैं। जिस दिन वो मरी, उस दिन डॉक्टर रॉयलट जल्दी अपने कमरे में चले गए, मगर सोए नहीं, क्योंकि उनके इंडियन सिगार का शदीद धुआं मेरी बहन के कमरे में आ रहा था। चुनाचे वो मेरे कमरे में आ गई और हमने बातें की। 11 बजे वो दोबारा अपने कमरे में जाने लगी, मगर रुकी और बोली, हेलन, तुमने रात को किसी के सीटी बजाने की आवाज सुनी है?
नहीं, कभी नहीं।
मगर मुझे रात के 3 बजे किसी के सीटी बजाने की आवाज साफ सुनाई देती है। मेरी नींद कमजोर है और इस आवाज से मेरी आंख खुल जाती है, मगर मालूम नहीं ये कहां से आ रही होती है, साथ के कमरे से या लॉन से। मैंने सोचा शायद तुमने भी इस आवाज को सुना हो। नहीं, मैंने नहीं सुना। शायद ये जिप्सियों की तरफ से आती हो। हाँ, शायद, मगर लॉन से आती तो तुम भी जरूर सुनती, मगर मैं गहरी नींद सोती हूँ ना। खैर छोड़ो। वो मुस्कुराई और कुछ देर बाद उसके दरवाजे में चाबी घुमाने की आवाज आई। इंडीड, क्या आप हमेशा ताला लगाकर सोती हैं? हाँ, हमेशा। क्यों? मैंने बताया ना कि घर में चीता और बनमांस हैं, वो भी आजाद घूमते हुए, तो खतरा रहता है, हिफाजत के लिए ताला लगाते हैं। बिल्कुल ठीक, बराए मेहरबानी बयान जारी रखें। उस रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं सोच रही थी कि कितनी बदकिस्मत हूँ। जुड़वा होने की वजह से जूलिया के साथ गहरा ताल्लुक था। रात खतरनाक लग रही थी। बाहर तेज हवा के चलने से आवाजें पैदा हो रही थीं और बारिश खिड़की से टकरा रही थी। अचानक एक औरत की खौफनाक चीख सुनाई दी। मैं अपनी बहन की आवाज सुनकर बरामदे में भागी। वहां से हल्की सीटी की आवाज सुनाई दी, जिसका जिक्र मेरी बहन ने भी किया था। फिर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मेरी बहन के कमरे का दरवाजा खुला और फिर मेरी बहन का खौफजदा चेहरा नजर आया। उसे मदद की जरूरत थी और जिस्म इधर उधर डगमगा रहा था जैसे कोई शराबी झूम रहा हो। मैंने उसे सहारा दिया मगर वो जमीन पर गिरी। शदीद दर्द की हालत में वो तड़प रही थी। पहले लगता था कि वो मुझे नहीं पहचान रही है, मगर फिर ऐसी आवाज में बोली जो मुझे कभी नहीं भूल सकती। Oh my God, Helen, it was the band, the speckled band. उसने कुछ और भी कहने की कोशिश की और डॉक्टर रॉयलेट के कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने जल्दी से अपने सुतेले बाप को आवाज दी जो तेजी से वहां आया, मगर उस वक्त तक मेरी बहन बेहिसो हरकत हो चुकी थी। वो जल्द ही मर गई। इस तरह मेरी मोहब्बत करने वाली प्यारी बहन मुझसे जुदा हुई। एक मिनट, क्या आपको यकीन है कि जो आवाजें आपने सुनी उस वक्त वो किसी धात की और सीटी की आवाजें थीं? मुकम्मल यकीन से इस बारे में कहती हैं। हाँ, मगर मेरा वहम भी हो सकता है। क्या उस वक्त आपकी बहन ने कपड़े पहने हुए थे?
नहीं, वो नाइट ड्रेस में थी। उसके हाथों में माचिस थी।
यानी उसने लाइट जलाकर कुछ देखने की कोशिश की थी। अहम बात है।
मौत की तहकीक के क्या नतीजे बरामद हुए थे?
डॉक्टर रॉयलेट की बदनामी की वजह से गहरी तहकीक हुई, मगर मौत की वजह मालूम ना हो सकी। दरवाजे में ताला लगा हुआ था और दूसरी जानिब खिड़की भी मजबूती से बंद थी। दीवारें बहुत मजबूत हैं, हत्ता के फर्श को भी चेक किया गया। चिमनी भी ऊपर से हिफाजत से बंद की गई थी। चुनाचे साबित हो गया कि बहन कमरे में अकेली थी। दूसरे किसी किस्म के तशद्दुद के निशान भी मौजूद ना थे। जहर का सोचा गया था?
डॉक्टर ने मुकम्मल जायजा लिया था, मगर बेसूद।
आपने क्या नतीजा अखज किया था?
मेरा ख्याल है कि खौफ और नर्वस शॉक उसकी मौत की वजह बने, मगर किस चीज का खौफ था ये मालूम ना हो सका।
क्या जिप्सीज उस वक्त वहाँ थे?
हाँ, वो वहाँ मौजूद ही रहते हैं।
और बैंड, स्पेकल्ड बैंड से आपने क्या नतीजा निकाला?
कभी मैं सोचती हूँ कि वो अपने हवास ही में नहीं थी, इसलिए ऐसी बात की। शायद वो बैंड ऑफ पीपल के मुतालिक बात कह रही थी, या फिर शायद उन जिप्सीज के मुतालिक कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वो ऐसा रुमाल अपने सरों पर बांधते हैं।
होम्स ने इस तरह सर को हिलाया जैसे इन अंदाजों से इत्तफाक ना रखता हो।
2 साल गुजर गए। कितनी अकेली जिंदगी गुजार रही हूँ मैं उस वक्त से। मगर अब एक माह पहले एक अजीज दोस्त ने मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। पर्सी आर्मिटेज उसका नाम है। सुतेले बाप ने कोई इख्तलाफ नहीं किया और मौसम बहार में शादी मुतवक्को है। 2 दिन पहले मरम्मत का काम शुरू हुआ, चुनाचे मुझे अपने कमरे से उस कमरे में सोना पड़ा जहां मेरी बहन मरी थी। वो बिस्तर जहां वो सोई थी। रात को मेरी आंख खुली तो सोच रही थी कि किन खौफनाक हालात में मेरी बहन मरी। अचानक रात की खामोशी में मुझे हल्की सीटी की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से उठी और लैंप जलाया, मगर कुछ नजर न आया। रात भर कांपती रही और दिन निकलने पर आपसे मिलने चली आई।
आपने बहुत अकलमंदी का काम किया, मगर क्या आपने कुछ छुपाया है?
नहीं, कुछ नहीं छुपाया।
ये, होम्स ने औरत के हाथ की आस्तीन ऊपर की जहाँ 4 उंगलियों और अंगूठे के निशान नजर आ रहे थे। आपके वालिद ने आप पर जुल्म किया है।
लड़की का रंग तब्दील हो गया। वो सख्त आदमी है और शायद उन्हें खुद भी इल्म नहीं कि कितने ताकतवर हैं जिस्मानी तौर पर।
थोड़ी देर खामोशी रही और होम्स आग की तरफ देखकर कुछ सोचता रहा।
बहुत संगीन मामला है।
बहुत सी बातों के मुतालिक इल्म हासिल करना जरूरी है। इसी वक्त अभी काम शुरू करना होगा।
अगर हम आज आपके घर आए तो क्या कमरों को अंदर से देख सकते हैं?
हाँ, डॉक्टर रॉयलेट को आज कस्बे में आना था, तो आप ये काम कर सकते हैं।
शानदार वॉटसन, हम दोनों चलेंगे।
ठीक है, मैं 12 बजे आपका घर में इंतजार करूंगी। उसके जाने के बाद होम्स ने पूछा, वॉटसन इस बारे में क्या ख्याल है? बहुत खतरनाक केस है। होम्स बोला, अगर ये बात दुरुस्त है कि तमाम कमरा बंद था तो यकीनन उसकी बहन वहां अकेली थी। तो फिर अहम बात यह रह जाती है कि सीटी की आवाज कहां से आई और मरती हुई औरत के अल्फाज, स्पेकल्ड बैंड। शादी से पहले ये वाकयात रूनमा होते हैं, धात की, किसी शय की आवाज, सीटी। इन बातों से नतीजे तक पहुंचने में मदद मिल सकती है, मगर असल बात क्या है ये जानने के लिए वहां जाना जरूरी है। मगर उसी वक्त दरवाजा खुला और एक मजबूत आदमी अंदर दाखिल हुआ, लंबा चौड़ा, चेहरा गुस्से में। तुम में से होम्स कौन है?
मैं हूँ,
मैं डॉक्टर ग्राइम्सबी रॉयलेट हूँ। यकीनन तशरीफ रखें।
नहीं, मेरी सौतेली बेटी यहाँ आई थी, क्या कह रही थी वो तुमसे?
आज कितनी सर्दी पड़ रही है, होम्स ने कहा।
मुझे इधर उधर की बातों में ना लगाओ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है।
होम्स मुस्कुरा रहा था। जब आप बाहर जाएं तो दरवाजा बंद कर दें।
बाहर तो मैं जाऊंगा, मगर बात पूरी करके। मेरे मामलात में दखल देने की कोशिश ना करो, मैं खतरनाक इंसान हूँ।
देखो, उसने सलाख उठाई और उसको मोड़ कर नीचे फेंक दिया। उसके जाने के बाद होम्स ने हल्का सा कहकर लगाया, दिलचस्प इंसान है, अगर कुछ वक्त और रुकता तो मैं दिखाता कि मैं इस टेढ़ी सलाख को सीधा कर सकता हूँ। और फिर वाकई थोड़ी मेहनत के बाद होम्स ने उसको सीधा कर दिया। वॉटसन नाश्ते के बाद इस केस के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे। नाश्ते के बाद वो चला गया और 1 बजे वापस आया। मैंने उसकी मरहूम बीवी की वसीयत देखी है, शादी के बाद बेटियों के पास रकम चली जाती तो आदमी के लिए अपने खराजात पूरे करने भी मुश्किल थे। चुनाचे उसके पास वजह है कि वो कोई कदम उठाए। बहुत संजीदा मामला है, क्योंकि आदमी को इल्म है कि हम इस मामले में पड़ चुके हैं। चलो उसके घर चलते हैं, रिवॉल्वर साथ ले लो।
तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.server555.com